मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 9 अक्टूबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे आप काफी समय से सुन रहे हैं। मैं एक विषय लेता हूं और उस विषय पर अपनी ओर से कुछ बातें आप सबके सामने रखता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बात की आपको पूरी छूट रहती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ओर से यह निर्देश जैसा ही होता है कि प्लीज इस पर आप सब अपनी अपनी तरफ से सोचें और अपने अपने ढंग से सोचने के बाद मेरी बातों को अपने अपने ढंग से ही स्वीकार करें। आज मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए, और वो तब्दीली क्या है। जब मैं तब्दीली के बारे में सोच रहा था तो मेरी पत्नी प्रीति ने अखबार पढ़ते हुए मुझे यह बताया कि आज अमिताभ बच्चन जी के बारे में देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अचानक मेरे दिमाग में क्लिक किया कि हाँ, ये बहुत अच्छा अवसर है जब मैं अब अपनी ओर से कोई बात न कहकर दूसरों की बात आपके सामने रखूं। और ये जो दूसरों की बात है वो किसके बारे में कही गई है? अमिताभ बच्चन जी के बारे में कही गई है। तो आज दोस्तों, मैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में, जो उनके साथ काम करने वाले जो लोग रहे हैं, खासकर जो फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं, जो फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, उनकी जो अमिताभ जी के बारे में धारणा है, जो उनके विचार हैं, वो कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले तो आइए हम इस पर थोड़ी सी बात करें, या यूं कह लीजिए सोच कर देखें कि जब मैं कह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन जी के बारे में, तो आपकी अपनी धारणा क्या है? चलिए, मैं अभी दूसरों की धारणाएं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपकी धारणा क्या है? मुझे मालूम है कि ज्यादातर लोग, देखिए वैसे तो आलोचक हर जगह होते हैं, होने भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई हर व्यक्ति को अलग अलग दृष्टि से देखता है, लेकिन जो एक सामूहिक धारणा है भारत की और यहां तक कि विश्व की, वो ये है कि वो एक महानायक है, बहुत जबरदस्त एक्टर है। और अगर मैं आप लोगों से यह प्रश्न करूं कि यदि ईश्वर हम सब में से किसी से भी यह पूछे कि क्या आप अमिताभ बच्चन बनना चाहेंगे, मतलब वो केवल पूछ रहा, अगर हम हां कह देते हैं तो हमें अमिताभ बच्चन बना देगा, तब मुझे लगता है कि जो 100% लोग हैं वो कहेंगे कि हां हम बनना चाहेंगे। जो आलोचक है तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि नहीं नहीं भैया, हम कुछ और बनना चाहेंगे, अगर बनाना ही है तो हमको ये बना दो। इसका मतलब है कि अमिताभ बच्चन जी की जो सफलताएं हैं वो हम सबको बहुत गहरे रूप में प्रभावित करती हैं, और इस तरह से प्रभावित करते लगता है काश हम भी अमिताभ बच्चन होते। लेकिन जब इस पर आगे जाकर के आप सोचेंगे तो क्या अमिताभ बच्चन जी इसी रूप में पैदा हुए थे, या उनकी जो इतनी प्रशंसा होती है क्या सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, या कि उस एक्टिंग के साथ कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं जो उन्हें इतना महान एक्टर बनाती हैं? और साथ ही साथ केवल महान एक्टर नहीं बनाती, देखिए जब किसी की तारीफ होती है, प्रशंसा होती है एक व्यक्तित्व के रूप में, तो वहां सिर्फ उसके काम की प्रशंसा नहीं होती है, उसके व्यवहार की प्रशंसा होती है, उसके आचरण की प्रशंसा होती है, उसके विचारों की प्रशंसा होती है, और ये सब मिलकर एक व्यक्ति की छवि का निर्माण करते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा एक्टर हो, कोई बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, और उस रूप में तो उसकी प्रशंसा हो रही है, खूब जमकर तारीफ हो रही है, बहुत सारे अवार्ड भी मिल गए हैं, लेकिन छवि के रूप में उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है। अमिताभ बच्चन जी की जो तारीफ है, जो सबसे बड़ी बात है, जो यूनिकनेस है, वो यही कि उनकी जो प्रशंसा होती है वो संपूर्णता में ही होती है। अभी आपने ध्यान दिया होगा, एक दो दिन पहले ही जब किसी को आप फोन लगाते हैं तो उसमें एक आवाज उभरती है COVID-19 से बचने के लिए, वो अमिताभ बच्चन जी की आवाज है, और ये वो आवाज है जिसको रेडियो स्टेशन ने किसी समय यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह भी कोई आवाज है, और आज दुनिया उस आवाज की मुरीद है। जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम ज्यादातर हमारे देश में जो दिखाए जाते हैं, उसमें जो आवाज होती है वो अमिताभ बच्चन जी की होती है, यानी कि एक समय की रिजेक्टेड आवाज आज पूरे हिंदुस्तान की सबसे डियरेस्ट और एक्सेप्टेड आवाज बन गई है। तो दोस्तों, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये अपने आप हो जाता है, क्या ये ईश्वरीय देन है, क्या ये प्रकृति ही देती है, आइए हम कुछ जो ओपिनियन है अमिताभ बच्चन जी के बारे में उनके माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जानना और समझना आपको खुद है, मैं तो केवल जो ओपिनियंस अखबार में छपे हुए हैं वो पढ़कर सुना रहा हूं। फ्रेंड्स, एक ओपिनियन है केसी बुकाड़िया जी का। केसी बुकाड़िया जो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे हैं, बहुत ही सम्मानित नाम है बुकाड़िया जी का। उन्होंने लिखा है कि अमिताभ बच्चन को आज भी काम करने की भूख है, इस भूख के सामने अमित जी थकते नहीं हैं। एक बार बुकाड़िया जी से अमिताभ बच्चन ने कहा था, जो भी उनकी बातचीत चल रही हो, तो अमिताभ बच्चन ने कहा था, बुकाड़िया साहब, फिल्म लाइन में काम करने की एज नहीं होती है, यहां काम करना एक नशा है। काम करो, काम करते रहो, जब तक काम करते रहोगे तब तक मरोगे नहीं, जब काम करना बंद कर दोगे तब मर जाओगे। क्या आपको नहीं लगता कि सच में कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने केवल कहा ही नहीं है बल्कि करके दिखाया भी है, उससे ज्यादा करके दिखाया है। कैसे करके दिखाया है, आइए अब हम एक जो फिल्म डायरेक्टर रहे हैं टीनू आनंद, उनके शब्दों को देखते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उनके लंबे कैरियर का राज, आप देखिए कि कब से उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करनी शुरू की और आज भी उतने ही जोश खरोश के साथ वो लगे हुए, जबकि उनके साथ के जो दूसरे एक्टर हैं जो ईश्वर की कृपा से अभी उज्जीवित हैं और शारीरिक दृष्टि से भी ठीक हैं, कभी कभी वो सार्वजनिक मंचों पर आते भी हैं लेकिन वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है या जो डायरेक्टर हैं वो उन्हें ले नहीं रहे, जो भी रीजन हो, ये भी हो सकता है कि वो खुद भी इसके लिए बहुत ज्यादा इच्छुक न हो, अलग मुद्दा है, लेकिन अमिताभ जी के साथ ऐसा नहीं है। तो यहां देखिए टीनू आनंद क्या कहते हैं, उनके लंबे कैरियर का राज सिर्फ एक ही है कि आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, पर काम नहीं छोड़ूंगा। इस उम्र में भी 14-14 घंटे काम करना कोई मजाक नहीं है। फिल्म कालिया का एक किस्सा है जो इन्होंने डायरेक्ट की थी टीनू आनंद जी ने। फिल्म कालिया का एक किस्सा है, सोनमर्ग में शूट कर रहा था, वहां से गुलमर्ग शिफ्ट करना था। गुलमर्ग में सुबह 6 बजे की शूटिंग रखी गई। इस बारे में जब बिग बी से कहा गया तब उन्होंने कहा कि मैं यहीं से सुबह 6 बजे सेट पर पहुंच जाऊंगा। मैंने सोचा कि यह कैसे संभव होगा क्योंकि यहां से वहां पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। वे तड़के 3:30 बजे चले होंगे और सेट पर वे हमसे पहले पहुंच चुके थे। दोस्तों, इसके बारे में मैं एक वाक्य अपनी ओर से जोड़ने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि हम लोग भी गए हुए हैं, गुलमर्ग भी गए हुए हैं, सोनमर्ग भी गए हुए हैं, राइट। 2-2.5 घंटे आप सफर में लग जाएंगे लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गर्मी के दिनों में भी वहां इतनी ठंड रहती है कि कमरे में बिना हीटर के आप सो नहीं सकते, इतनी ठंड होती है। और उतनी ठंड में वो सुबह 3:30 बजे वहां से चल रहे हैं तो तैयार भी तो हुए होंगे, मतलब 2-2.5 बजे उठे होंगे इतनी ठंड में, और फिर वो ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां फिर से ठंड है। ठंड में उठे, ठंड में सफर किया और ठंड में शूटिंग की, इस किस उम्र में। चलिए उस समय तो वो थोड़े से यंग भी रहे होंगे लेकिन आप देखिए कि काम के बारे में उनकी धारणा क्या है। तो दोस्तों, चूंकि वक्त हो चुका है और मुझे लगता है कि मैंने जो 2 लोगों के विचार उनके बारे में बताए हैं शायद हम सबके लिए बहुत प्रेरक हो सकते हैं। और अंतिम शब्द ये कि अमिताभ बच्चन जी ने भारतीय दर्शन के उस आदर्श वाक्य को जी कर दिखाया है और अभी भी दिखा रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और तब ढेर सारी बातें होंगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं स्वीकार करें, आप सब अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। नमस्कार।